यहूदी धर्म पर अत्याचार। सिमोन का षड्यंत्र। अध्याय चार। सिमोन ने, जिसके विषय में पहले यह कहा जा चुका है कि उसने कोष के विषय में सूचना दी और अपने देश के साथ विश्वासघात किया था, ओनियस पर यह झूठा अभियोग लगाया कि उसने हेलियोडोरस पर आक्रमण किया था और कि वो सब बुराइयों का उत्तरदायी है। उसने नगर के उपकारक, जाति के रक्षक और संहिता के उत्साही पालनकर्ता को राजद्रोही घोषित करने का साहस किया। सिमोन की शत्रुता यहां तक बढ़ गई कि उसके अनुयायियों द्वारा हत्याएं होने लगी। जब ओनियस ने देखा कि सिमोन की यह शत्रुता खतरनाक है और कि केलेसीरिया और फेनिके के शासक मेनेस्थेस का पुत्र अपोलोनियस सिमोन की शत्रुता को प्रोत्साहन देता है, तो वो राजा के पास गया। इसलिए नहीं कि वो अपने नागरिकों पर दोष लगाए, बल्कि इसलिए कि उसे समस्त राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की चिंता थी, क्योंकि उसने देखा कि जब तक राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तक न तो प्रशासन में शांति होगी और न सिमोन अपनी हरकतें बंद करेगा। यूनानी सभ्यता का बोलबाला। सिलुकस की मृत्यु के बाद अंतियोक, जो एपिफोनस कहलाता है, राजा बना। तब ओनियस के भाई यासोन ने प्रधान याजक के पद पर अधिकार कर लिया, क्योंकि वो राजा से मिलने गया और उसने 360 मन चांदी और किसी अन्य सूत्र से प्राप्य 80 मन चांदी देने की प्रतिज्ञा की। इसके सिवा उसने इस शर्त पर और 150 मन चांदी देने का वादा किया कि राजा उसे यह अधिकार दे कि वो एक व्यायामशाला और एक अखाड़ा स्थापित करे और यरूशलेम के निवासियों को अंताकिया की नागरिकता प्रदान करे। राजा ने अनुमति दे दी। प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद यासोन तुरंत अपने देश भाइयों में यूनानी रीति रिवाजों के प्रचलन का प्रवर्तन करने लगा। उसने वे छूटें रद्द कर दी जो उदार मना राजाओं ने यूपोलेमस के पिता योहन के निवेदन पर यहूदियों को दे रखी थीं। यह वही यूपोलेमस है जिसे बाद में मित्रता और संधि का संबंध स्थापित करने रोम भेजा गया। यासोन ने नागरिकों के संहिता सम्मत अधिकार समाप्त कर संहिता विरोधी रीति रिवाजों का प्रवर्तन किया। उसने बिना विलंब किए मंदिर के पर्वत के ठीक नीचे एक व्यायामशाला बनवाई, जिसमें उसने कुलीन युवकों को भर्ती किया। विधर्मी यासोन के कारण, जो प्रधान याजक नहीं बल्कि बड़ा कुकर्मी था, यूनानीकरण और विदेशी रीति रिवाजों का इतना बोलबाला हो गया कि याजकों को वेदी की सेवा करने की चिंता नहीं रही। वे मंदिर को तुच्छ समझते और बलिदान चढ़ाना छोड़ देते, किंतु चक्र फेंकने की घंटी बजते ही वे संहिता विरोधी खेलों में सम्मिलित होने के लिए व्यायामशाला की ओर दौड़ पड़ते। वे अपने पूर्वजों द्वारा सम्मानित पदों की उपेक्षा करते और यूनानियों द्वारा प्रदत्त सम्मान को बड़ा महत्व देते। इन सब बातों के कारण उनकी दुर्गति हो गई, क्योंकि वे जिन लोगों के रीति रिवाजों का अनुकरण करना और हर तरह जिनके सदृश बनना चाहते थे, वे उनके शत्रु और अत्याचारी बन गए। आगे की घटनाएं इस बात को प्रमाणित करेंगी कि ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना कोई साधारण बात नहीं है। तीरूस का खेलकूद। तीरूस में हर पांचवें वर्ष राजा की उपस्थिति में खेलकूद होता था। नीच यासोन ने यरूशलेम के प्रतिनिधियों के रूप में कुछ ऐसे लोगों को भेजा जिन्हें अंताकिया की नागरिकता प्राप्त हो गई और उन्हें हेराक्लेस की बलि चढ़ाने के लिए 300 चांदी के सिक्के दिए, किंतु वहां पहुंचकर प्रतिनिधियों को लगा कि ये रुपया बलिदान के लिए देना अनुचित था और उन्होंने उसे एक अन्य कार्य में खर्च किया। भेजने वाले ने इसे इसलिए भेजा था कि इसे हेराक्लेम के बलिदान के लिए खर्च किया जाए, लेकिन लाने वालों को ये बात उचित नहीं लगी, इसलिए इसे नावों के निर्माण के लिए अर्पित किया गया। यरूशलेम में अंतियोक का स्वागत। मनेस्थेस के पुत्र अपोल्लोनियस को फिलोमेतोर के राज्याभिषेक के अवसर पर मिस्र भेजा गया। अपोल्लोनियस से अंतियोक को मालूम हुआ कि फिलोमेतोर उसकी राजनीति का विरोधी है और इसलिए वह अपने राज्य की सुरक्षा का प्रबंध करने लगा। इस सिलसिले में वो याफा गया और वहां से यरूशलेम। यासोन और नगर के लोगों ने बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया। जैसे ही उसने नगर में प्रवेश किया, नगर के लोगों ने मशालें जलाई और उसका जयकार किया। इसके बाद वह अपनी सेना के साथ फेनिके लौट आया। प्रधान याजक मनेलास। 3 वर्ष बाद यासोन ने मनेलास को, जो उपर्युक्त सिमोन का भाई था, राजा को रुपया देने और प्रशासन की कुछ आवश्यक समस्याओं के संबंध में राजा का निर्णय ले आने भेजा। मनेलास ने राजा से मिलने पर उसे यह विश्वास दिलाया कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है। राजा ने उसे प्रधान याजक के पद पर नियुक्त किया, क्योंकि उसने यासोन से 300 मन चांदी अधिक देने की प्रतिज्ञा की। वो अपनी नियुक्ति का राज्यादेश लेकर यरूशलेम पहुंचा। यद्यपि वो उस पद के नितांत अयोग्य था, क्योंकि उसकी प्रकृति क्रूर तानाशाही की जैसी थी और वो क्रोध के आवेश में जंगली जानवर जैसा व्यवहार करता था। इस प्रकार यासोन, जिसने अपने भाई को पदच्युत किया था, अब स्वयं दूसरों के द्वारा पदच्युत कर दिया गया और उसे अम्मोनियों के देश भागना पड़ा। मनेलास ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन उसने राजा को जो रुपया देने का वचन दिया था वो नहीं दिया। तब भी नहीं दिया जब गढ़ के प्रधान सोस्त्रातस ने, जो राजकर वसूलने का अधिकारी था, उसे ऐसा करने को कहा। इस कारण राजा ने दोनों को स्पष्टीकरण के लिए बुला भेजा। मनेलास ने स्थानापन्न प्रधान याजक के रूप में अपने भाई लिसिमाखस को नियुक्त किया और सोस्त्रातस ने कुप्रुस के सैनिकों के अध्यक्ष क्रातेस को अपने स्थान पर। ओनियस की हत्या। इस बीच तारसस और मल्लोस में राजद्रोह हो रहा था, क्योंकि ये नगर राजा की उपपत्नी अंतियोखिस को दिए गए थे। राजा शीघ्र ही स्थिति सुलझाने वहां गया। उसने अंद्रोनिकस को, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अपनी जगह पर नियुक्त किया। मनेलास ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है। उसने मंदिर के कुछ सोने के पात्र चुरा कर उन्हें अंद्रोनिकस को भेंट में दे दिए। उसने कुछ अन्य पात्र तीरुस और आसपास के नगरों में बेचे। ओनियस ने इसकी निश्चित जानकारी प्राप्त कर उसे बहुत फटकारा। वो समय दफने में था, जो अंताकिया के पास एक शरण नगर है। इस कारण मनेलास ने अंद्रोनिकस को एकांत में बुलाकर उससे अनुरोध किया कि वो ओनियस की हत्या कर दे। इसके बाद उसे विश्वास था कि वो कपट से अपना उद्देश्य पूरा कर सकेगा। उसने ओनियस को हार्दिक प्रणाम किया और शपथ खाकर उसे अपने सद्भाव का विश्वास दिलाया। यद्यपि ओनियस का संदेह दूर नहीं हुआ, फिर भी वो अपना शरण स्थान छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ज्यों ही उसने ऐसा किया, अंद्रोनिकस ने विश्वासघात कर उसकी हत्या कर डाली। इस रक्तपात से न केवल यहूदी, परंतु बहुत से अन्य गैर यहूदी लोग भी उस मनुष्य की निर्मम हत्या पर क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गए। अंद्रोनिकस को हत्या की सजा। जैसे ही राजा किलिकिया प्रदेश से लौटा, नगर के यहूदियों और यूनानियों ने, जो इस अपराध की निंदा करते थे, मिलकर राजा से ये शिकायत की कि ओनियस का अकारण वध किया गया है। अंतियोक को बड़ा दुख हुआ और उसका हृदय पिघल गया। वो मृतक की प्रज्ञा और संयम का स्मरण करते हुए रो पड़ा। उसने आवेश में आकर तुरंत अंद्रोनिकस के बैंगनी वस्त्र उतारे, उसका कुर्ता फाड़ डाला और उसे पूरे नगर में घुमाकर उस स्थान तक पहुंचाया जहां उसने ओनियस की हत्या कराई थी, और वहां उस विधर्मी हत्यारे को मरवा दिया। इस प्रकार प्रभु ने उसे उचित दंड दिया। लिसीमाखस की हत्या। लिसीमाखस ने मनेलास की अनुमति से नगर के मंदिर से बहुत से सोने के पात्र चुराए। जब ये बात लोगों को मालूम हुई तो वे लिसीमाखस का विरोध करने एकत्र हो गए। लिसीमाखस ने लगभग 3,000 आदमियों को शस्त्र प्रदान किए और उन्हें उत्तेजित और क्रुद्ध भीड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसने ओरानस नामक व्यक्ति को उनका नायक बनाया। ओरानस जितना बूढ़ा था उतना मूर्ख भी था। जब लोगों को पता चला कि लिसीमाखस उन पर आक्रमण करने वाला है तो वे पत्थर, लकड़ी और राख उठाकर लिसीमाखस के आदमियों पर धड़ाधड़ फेंकने लगे। इस तरह उन्होंने उनमें बहुतों को घायल किया, कुछ लोगों को मार डाला, बाकी सबों को भगा दिया और कोष के पास मंदिर के लुटेरे का वध किया। मनेलास की दोष मुक्ति। इन घटनाओं के बाद मनेलास पर मुकदमा चलाया गया। जैसे ही राजा तीरूस लौटा, उसके सामने परिषद के भेजे 3 सदस्यों ने उस पर दोषारोपण किया। जब मनेलास ने देखा कि मामला उसके प्रतिकूल होता जा रहा है तो उसने दोरिमेनस के पुत्र पतोलेमेउस से कहा कि यदि वो राजा को उसके पक्ष में कर देगा तो वो उसे एक भारी रकम देगा। पतोलेमेउस राजा को हवा खाने का मौका देने के बहाने प्रांगण ले गया और उसका मन बदलने में सफल हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि राजा ने मनेलास को, जो दंगे का मूल कारण था, दोष मुक्त ठहराया और उन अभागे लोगों को प्राणदंड दिया जिन्हें स्कूती भी दोष मुक्त ठहराते यदि वे उनका न्याय करते। जो लोग नगर, राष्ट्र और पवित्र पात्रों की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए, उन्हें अविलंब अन्यायपूर्वक प्राण दंड दिया गया। तीरूस के निवासी इस अपराध के कारण इतने क्रुद्ध थे कि उन्होंने मृतकों को समारोह के साथ दफनाने का खर्च दिया। इस प्रकार शासकों के लालच के कारण मनेलास अपना पद संभालता रहा। उसकी दुष्टता बढ़ती गई और वो अपने सहनागरिकों का कट्टर विरोधी बन गया।